एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज ग्रंथ सार में हम एक ऐसी किताब की गहराइयों में उतर रहे हैं जिसने भविष्य की एक, कह सकते हैं, चौंकाने वाली तस्वीर पेश की, एल्दस हक्सले की कालजयी रचना ब्रेव न्यू वर्ल्ड।
हाँ बिल्कुल, एक ऐसी दुनिया जो मतलब ऊपर से देखो तो एकदम परफेक्ट लगती है, पर अंदर झांको तो रूह कांप जाए।
और एल्दस हक्सले वो कोई आम लेखक नहीं थे, है ना? 1894 में जन्मे उनके दादा टीएच हक्सले मशहूर जीव विज्ञानी थे।
जी हाँ,
तो विज्ञान और मानवीकी, आप कह सकती हैं, दोनों का गहरा असर था उन पर। उनके लेखन में वो पैनी नज़र, वो दार्शनिक सोच और तकनीक को लेकर एक चिंता, वो साफ झलकती है।
बिल्कुल, अली किताब आई 1932 में। सोचिए जरा माहौल, दो विश्व युद्धों के बीच का समय, हेनरी फोर्ड की असेंबली लाइन वो धूम मचा रही थी, उपभोक्तावाद बढ़ रहा था, मनोविज्ञान, जेनेटिक्स, इनमें नई नई बातें सामने आ रही थीं। हक्सले ने जैसे इन सबको मिलाकर भविष्य का एक खाका खींच दिया।
सही कहा। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस अनोखी दुनिया, इसके किरदारों और हक्सले के संदेश को, परत दर परत खोलकर समझें।
हाँ,
तो चलिए सीधे चलते हैं साल AF 632 में, आफ्टर फोर्ट 632।
जी हाँ, आफ्टर फोर्ड, जहां हेनरी फोर्ड एक तरह से भगवान बन चुके हैं और दुनिया पर एक ही सरकार है, वर्ल्ड स्टेट, और उनका नारा समुदाय पहचान स्थिरता, कम्युनिटी आइडेंटिटी स्टेबिलिटी।
सुनने में कितना अच्छा लगता है,
हाँ,
लेकिन यही पहला झटका लगता है ना। इस दुनिया में इंसान माँ के पेट से पैदा नहीं होते।
नहीं,
उन्हें लंदन की सेंट्रल हैचरी जैसी जगहों पर बोतलों में उगाया और डिकैंट किया जाता है।
बिल्कुल, ये हैचरियां किसी फैक्ट्री की तरह हैं। वहां एक प्रक्रिया है, बुकानोस की प्रोसेस। इससे मतलब सोचिए, एक अंडे से 96 तक हूबहू जुड़वा बच्चे।
96?
हाँ, और ये निचले दर्जे के कामगार बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। मतलब एक रूपता की पराकाष्ठा।
यानी इंसान नहीं, समाज की मशीन के लिए पुर्जे तैयार हो रहे हैं।
और फिर पहचान का क्या हुआ? समुदाय पहचान स्थिरता, इसमें पहचान कहाँ बची?
पहचान तो तय की जाती है, पांच जातियां हैं ना, अल्फा, वो सबसे बुद्धिमान नेता वर्ग से लेके एप्सिलॉन तक, जो मानसिक रूप से कमजोर है, मेहनत मजदूरी वाले काम करने वाले।
अच्छा,
पैदा होने से पहले ही तय हो जाता है कि कौन क्या बनेगा, और फिर रसायनों और मनोवैज्ञानिक कंडीशनिंग से उन्हें वैसा ही ढाल दिया जाता है।
और कंडीशनिंग का एक और तरीका है, हिप्नोपीडिया, यानी नींद में सिखाना।
जी, स्लीप टीचिंग।
बच्चों को सोते समय नैतिक पाठ और सामाजिक नारे रटा दिए जाते हैं, जैसे हर कोई हर किसी का है, हाँ, या पुरानी चीज फेंकना नई खरीदने से बेहतर है, ताकि वो अपनी तयशुदा जिंदगी से खुश रहें, कभी सवाल ना उठाएं। इस दुनिया ने देखिए, बीमारी, बुढ़ापा, युद्ध, गरीबी, सब खत्म कर दिया है। कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं,
लेकिन किस कीमत पर? यही सवाल है। परिवार, माँ बाप, गहरा प्यार, शादी, ये सब शब्द तो गंदे माने जाते हैं वहाँ।
बिल्कुल अश्लील।
कला, साहित्य, धर्म, यहाँ तक कि सच की गहरी खोज, सब पर पाबंदी है, क्योंकि ये स्थिरता में खलल डाल सकते हैं।
बिल्कुल, और इसीलिए लोगों को खुश और काबू में रखने के लिए उनके पास तरीके हैं, जैसे बेरोक टोक सेक्स, हर कोई हर किसी का है, दिमाग सुन करने वाले खेल, और फीलीज, ऐसी फिल्में जो देखने वाले को शारीरिक एहसास भी कराती हैं, और सबसे बड़ा हथियार,
सोमा।
हाँ, सोमा, एक चमत्कारी दवा, हर दुख, हर चिंता, हर बुरी भावना को तुरंत गायब कर देती है, बस एक गोली लो और सब चंगा।
यही तो सबसे डरावनी बात है। ये स्थिरता, ये खुशी, क्या ये असली है, या ये गुलामी का एक ऐसा रूप है जहां कैदी अपनी जंजीरों से ही प्यार करने लगे हैं? हक्सले यहाँ एक बुनियादी सवाल खड़ा करते हैं। क्या हमें बनावटी उथली खुशी चाहिए, या इंसान होने का पूरा अनुभव जिसमें दुख, दर्द, संघर्ष सब शामिल है?
और इसी संघर्ष को हम कुछ किरदारों के जरिए देखते हैं। सबसे पहले हैं बर्नार्ड मार्क्स।
हाँ, बर्नर्ड।
वो अल्फा प्लस है, मतलब ऊंची जाति का, पर शारीरिक तौर पर थोड़ा कह लीजिए कमजोर, इसलिए उसे लगता है कि वो समाज में फिट नहीं बैठता।
तो क्या उसकी नाराजगी समाज की बुराइयों के खिलाफ है, या सिर्फ अपनी कुंठा का नतीजा है? वो व्यवस्था की आलोचना तो करता है, पर क्या उसमें सचमुच बदलाव लाने का साहस है?
ये सवाल तो बना रहता है, क्योंकि जब उसे मौका मिलता है ना, प्रसिद्धि मिलती है, तो वो उन्हीं चीजों का मजा लेने लगता है जिनकी वो पहले बुराई करता था। थोड़ा पाखंडी सा लगता है।
फिर है लेनिना क्राउन।
हाँ, लेलिना क्राउन, वो बीटा जाति की है, बहुत सुंदर, लोकप्रिय और समाज के नियमों में पूरी तरह ढली हुई। हैचरी में काम करती है।
वो तो वर्ल्ड स्टेट की परफेक्ट प्रोडक्ट लगती है, समाज के दिए सुखों का पूरा आनंद लेती है।
हाँ, ज्यादातर तो यही है, पर उसमें भी कुछ हल्की सी दरारें दिखती हैं, जैसे वो समाज के नियम के खिलाफ जाकर हेनरी फॉस्टर के साथ कुछ ज्यादा ही वक्त बिताती है, फिर बर्नार्ड की तरफ खिंचती है और बाद में जॉन की तरफ भी, लेकिन वो गहरी भावनाओं को समझ ही नहीं पाती।
अच्छा,
प्यार, शर्म, दुख, ये सब उसके लिए जैसे एक पहेली है।
ये दिखाता है कि कंडीशनिंग कितनी गहरी है, जैसे भावनाओं की भाषा ही छीन ली गई हो। लेलिना एक तरह से इस समाज के भावनात्मक गरीबी का प्रतीक बन जाती है ना?
बिल्कुल। और फिर आता है इस कहानी का केंद्र बिंदु जॉन, जिसे सैवेज यानी जंगली कहा जाता है। वो इस दुनिया का परम बाहरी व्यक्ति है।
बाहरी कैसे?
उसका जन्म हुआ है न्यू मैक्सिको के एक सैवेज रिजर्वेशन में।
रिजर्वेशन मतलब ऐसी जगहें जहां पुराना समाज अभी भी बचा हुआ है।
हाँ, जहां लोग अब भी माँ के पेट से जन्म लेते हैं, बूढ़े होते हैं, बीमार पड़ते हैं, शादी करते हैं। जॉन की माँ लिंडा वो वर्ल्ड स्टेट की ही नागरिक थी जो गलती से वहां फंस गई थी। और उसका पिता वो लंदन हैचरी का डायरेक्टर था। ये बात बाद में खुलती है।
क्या विडंबना है। तो जॉन का पालन पोषण कैसे हुआ वहाँ रिजर्वेशन में?
दो चीजों ने उसे गढ़ा, एक तो वहां के स्थानीय जूनी कबीले की रस्में और मान्यताएं, और दूसरी शेक्सपियर की रचनाओं की एक पुरानी किताब।
शेक्सपियर?
हाँ, वही उसकी दुनिया थी। उसने प्यार, नफरत, सम्मान, त्रासदी, भगवान, सब कुछ शेक्सपियर से सीखा।
तो वो तो जीता जागता विरोधाभास हो गया वर्ल्ड स्टेट के लिए। एक तरफ फोर्ड की सिखाई स्थिरता, दूसरी तरफ शेक्सपियर का सिखाया जुनून और संघर्ष। क्या होता है जब ये दो दुनियाएं टकराती हैं?
यही कहानी का असल रोमांच है। बर्नार्ड को जब जॉन और लिंडा के बारे में पता चलता है, तो वो उन्हें लंदन ले आता है।
क्यों? क्या मकसद था उसका?
उसके मन में अपने बॉस यानी जॉन के पिता से बदला लेने और खुद मशहूर होने का ख्याल है।
बर्नार्ड का स्वार्थ फिर सामने आ गया। और जॉन, जॉन का क्या रिएक्शन होता है लंदन देखकर?
शुरू में तो वो हैरान रह जाता है। शेक्सपियर के शब्दों में क्या उठता है, ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड दैट हैज सच पीपल इजंट, मतलब ओ बहादुर नई दुनिया जिसमें ऐसे लोग हैं। उसे लगता है ये कमाल की जगह है।
लेकिन ये भ्रम, ये जल्दी ही टूट जाता होगा।
बिल्कुल। जैसे जैसे वो इस सभ्य दुनिया को करीब से देखता है, फिलिजल्स की बनावट, सोमा का नशा, रिश्तों का खोखलापन, लेनिना का उसके रोमांटिक आदर्शों से एकदम अलग व्यवहार, उसका मोहभंग हो जाता है। उसे ये दुनिया अंदर से खोखली और अमानवीय लगने लगती है।
उसका संघर्ष फिर अपनी आत्मा को बचाने का संघर्ष बन जाता है, एक ऐसी दुनिया में जहां आत्मा के लिए कोई जगह ही नहीं बची है। और इस दुनिया का बचाव कौन करता है? वो कंट्रोलर मुस्तफा मोंड।
हाँ, मुस्तफा मोंड, पश्चिमी यूरोप के वर्ल्ड कंट्रोलर। वो कोई साधारण विलन नहीं है, वो खुद एक प्रतिभाशाली अल्फा है जिसने कभी ज्ञान और सत्य को चुना था, पर फिर समाज की स्थिरता के लिए उसे त्याग कर सत्ता चुन ली।
वो जानता है कि क्या खोया गया है, कला, धर्म, सच्चा विज्ञान, परिवार, लेकिन उसका तर्क है कि ये सब खुशी और स्थिरता के लिए दी गई जरूरी कीमत है। वो इस सुनहरे पिंजरे का कह सकते हैं मुख्य डिजाइनर और डिफेंडर है।
कहानी में टकराव तब और बढ़ता है जब जॉन की माँ लिंडा लंदन के माहौल और सोमा के नशे में धीरे धीरे खत्म हो जाती है। उसकी मौत पर जॉन का दुख वो वर्ल्ड स्टेट के लोगों के लिए एक तमाशा या अजीब बात है। वो समझ ही नहीं पाते कि कोई क्यों रो रहा है।
भावनाओं का कितना भयानक दमन, सोचकर भी अजीब लगता है।
इस घटना से टूटकर जॉन विद्रोह कर देता है। वह अस्पताल में डेल्टा मजदूरों को बांटा जा रहा सोमा फेंक देता है, चिल्लाता है कि ये जहर है, उन्हें आजाद होने को कहता है। दंगा भड़क जाता है।
और बर्नार्ड और हेल्महोल्ट्ज़, हेल्महोल्ट्ज़ भी तो एक असंतुष्ट अल्फा था, है ना?
हाँ, हेल्महोल्ट्ज़ वॉटसन, वो एक लेखक है और समाज की सतही बातों से ऊब चुका है। वो जॉन के जुनून को कुछ हद तक समझता है और उसका साथ देता है दंगे में, लेकिन बर्नार्ड वो डर जाता है, पीछे हट जाता है।
यही उनके चरित्र का अंतर साफ हो जाता है। हेल्महोल्ट्ज़ में सच के लिए खड़े होने का कुछ साहस है, बर्नार्ड भी बिल्कुल नहीं।
बिल्कुल। तीनों पकड़े जाते हैं और मुस्तफा मोंड के सामने पेश होते हैं, और यही होती है किताब की सबसे मशहूर बहस।
हाँ, जॉन और मोंड के बीच का वो दार्शनिक टकराव। मोंड कहता है कि हमने दुख, अस्थिरता को खत्म करके सबको खुश रखा है, कला, धर्म, स्वतंत्रता, ये सब खतरनाक हैं, अस्थिरता लाते हैं। जवाब में जॉन क्या मांगता है?
जॉन कहता है, मुझे आराम नहीं चाहिए, मुझे भगवान चाहिए, मुझे कविता चाहिए, मुझे असली खतरा चाहिए, मुझे आज़ादी चाहिए, मुझे अच्छाई चाहिए, मुझे पाप चाहिए। मतलब, but I don't want comfort, I want God, I want poetry, I want real danger, I want freedom, I want goodness, I want sin.
वो असल में दुखी होने का अधिकार मांग रहा है।
हाँ,
क्या जबरदस्त मांग है, इंसान होने का अधिकार अपनी पूरी जटिलता के साथ। मोंड इसका क्या जवाब देता है?
मोंड कहता है कि समाज ने ये अधिकार खुशी और स्थिरता के बदले छोड़ दिया है, चुन लिया है। वो बर्नार्ड और हिलमोल्स को निर्वासित कर देता है, ऐसे द्वीपों पर जहां और भी ऐसे लोग भेजे जाते हैं जो समाज में फिट नहीं होते।
और जॉन, जॉन का क्या होता है?
जॉन इस दुनिया का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर देता है। वो समाज से दूर एक पुराने लाइट हाउस में जाकर रहने लगता है। वहां वो तपस्या करता है, खुद को कोड़े मारता है ताकि अपने अंदर से सभ्यता का जहर निकाल सके।
लेकिन क्या उसे शांति मिलती है? क्या वो सफल हो पाता है?
नहीं, नहीं। उसका अंत बहुत दुखद है। लोग उसे खोज निकालते हैं, पत्रकार, पर्यटक। उसका अकेलापन एक तमाशा बन जाता है।
ओह,
उसे फिल्माया जाता है, उसका मजाक उड़ाया जाता है। एक रात भीड़ उसे घेर लेती है, सोमा का नशा और उन्माद का माहौल होता है, और जॉन भी उसमें खिंच जाता है।
यानी वो भी अंत में उसी चीज का शिकार हो जाता है जिससे वो इतनी नफरत करता था, जिससे भाग रहा था।
हाँ, और अगली सुबह इस गिरावट की शर्म और आत्मघृणा से भरकर वो लाइट हाउस में फांसी लगा लेता है। उसके लटकते हुए पैर वो उस दुनिया पर एक खामोश तमाचा हैं जिसने इंसानियत की कोई कदर नहीं की।
एक दिल दहला देने वाला अंत। ये किताब हमें वाकई सोचने पर मजबूर कर देती है। एक तरफ ये सर्वशक्तिशाली राज्य का खतरा दिखाती है जो तकनीक के जरिए लोगों को काबू में रखता है,
पर ये काबू डंडे से नहीं,
नहीं
बल्कि खुशी के नशे से किया जाता है।
सोमा, फीलीज, कंडीशनिंग, ये गुलामी की सोने की जंजीरें हैं।
बिल्कुल, और उपभोक्तावाद पर भी कितना तीखा कटाक्ष है। पुरानी चीज ठीक करने से अच्छा है नई खरीद लो।
यही सोच रिश्तों पर भी हावी है। सब कुछ इस्तेमाल करो और फेंको वाला हिसाब है, गहराई कहीं नहीं। और सबसे बड़ा सवाल वही है, खुशी बनाम सच्चाई और आजादी। क्या बिना मतलब की आसान खुशी किसी काम की है? जॉन का दुखी होने का अधिकार मांगना हमें याद दिलाता है कि इंसान होने का मतलब सिर्फ सुख भोगना नहीं है,
नहीं,
बल्कि सच, आजादी और गहरे अनुभव के लिए संघर्ष करना भी है।
हक्सले ने प्रतीकों का भी खूब इस्तेमाल किया है ना, जैसे सोमा, वो झूठी खुशी और पलायन का प्रतीक, या फोर्ट का भगवान बन जाना, टेक्नोलॉजी और बड़े पैमाने पर उत्पादन की पूजा, और शेक्सपियर, वो खोई हुई इंसानी भावनाओं और गहराई का प्रतीक।
और शीर्षक ब्रेव न्यू वर्ल्ड, शेक्सपियर के नाटक द टेम्पेस्ट से लिया गया। जॉन इसे पहले उम्मीद से बोलता है, फिर बाद में कड़वे व्यंग्य से। ये पूरी आदर्श दुनिया ही अपने आप में एक भयानक विडंबना है।
इसे पढ़कर मन एकदम बेचैन हो जाता है। ये जॉर्ज ऑरवेल के 1984 जैसा डर नहीं है जहां जुल्म साफ दिखता है, यहां तो सब खुश हैं। यही बात ज्यादा डराती है।
हाँ, ऐसा लगता है कि हमने अपनी आजादी खुद ही बेच दी है आराम और सुरक्षा के बदले। और आज के जमाने में ये बातें कितनी सच लगती हैं। सोशल मीडिया पर लाइक्स की दौड़, हर छोटी मोटी परेशानी के लिए दवा, मनोरंजन का वो अंतहीन नशा। क्या हम भी धीरे धीरे ब्रेव न्यू वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं? ये सवाल परेशान करता है।
जॉन का अंत निराशाजनक जरूर है, पर शायद हक्सले हमें यही चेतावनी दे रहे हैं कि अगर हमने अपनी इंसानियत, जिसमें दुख सहने की क्षमता, सच जानने की इच्छा और आजादी की चाह शामिल है, को खो दिया, तो सब कुछ पाकर भी हम असल में हारे हुए होंगे।
सच है, ये कहानी शायद यही सिखाती है कि असली मानवीय गरिमा और सार्थकता वो आसान रास्तों और बनावटी खुशी में नहीं है,
नहीं,
बल्कि मुश्किलों का सामना करने, स्वतंत्रता को चुनने और गहरी भावनाओं को महसूस करने में है, चाहे वो सुखद हो या दुखद।
और इसीलिए ये आज भी उतनी ही जरूरी है। हमें आगाह करती है कि तकनीक और सुख की इस अंधी दौड़ में कहीं हम वो ना खो दें जो हमें इंसान बनाता है।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।